अध्याय चार, कुछ निजी विशेषताएं। घनानंद की भाव संपदा और उनकी काव्य शिल्प की विशेषताओं का समुचित परिचय प्राप्त करने के लिए एतद् विषयक उनके कुछ निजी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। इसकी ओर संकेत करते हुए कवि मित्र एवं उसके प्रशस्तिकार बद्रनाथ ने लिखा है, विनती कर जोरी कह बात कहूँ, जो सुनऊ मन कान देत दही सोचूँ, कवित घनानंद की न सुनऊ पहचान नहीं उही खेत सोजू। घनानंद कवित प्रसंख्या 274। यदि उस खेत से पहचान नहीं है तो घनानंद की कविता को मत सुनो। यह क्षेत्र विषम या एक तरफा प्रेम की अनिर्वचनीय व्यथा का क्षेत्र है, जो उस काल के काव्य मर्मियों के लिए अनपहचान का क्षेत्र बन गया था। वस्तुतः घनानंद एक ऐसे युग के कवि हैं जिसमें अधिकांश कवियों ने निजी विशेषताओं का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि अधिकांश रीतिबद्ध कवियों में पूर्ववर्ती काव्य शास्त्रीय परिपाटी का अंधानुकरण करने के कारण प्रायः एक रस्ता दिखाई देती है। अतः एक को दूसरे से अलग करके पहचान पाना लगभग असंभव है, लेकिन रीतिकाल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा की अपनी सामान्य विशेषताओं के बावजूद इसके कवि अपनी निजी विशेषताएँ भी रखते हैं, जिन्हें भाव, भाषा, शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में आसानी से देखा जा सकता है। घनानंद इस धारा के सर्वोत्तम कवि हैं। इस उत्तमता का आधार इनकी सर्वाधिक निजी विशेषताएं ही हैं। इन विशेषताओं को घनानंद के प्रशस्तिकार ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, जो कवि योग की रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजियो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहें सुघन जी के कवित्व बखाने। घनानंद की कविता का समुचित मूल्यांकन केवल वही कर सकता है जो स्वयं बहुत बड़ा प्रेमी हो, ब्रजभाषा में निपुण, सुंदरता के भेदों भेद का पारखी हो, संयोग और वियोग को विभिन्न मनोदशाओं का आत्मानुभूति के स्तर तक ज्ञाता हो, भावना के विभिन्न भेदों पर भेद तथा उसके स्वरूप को ठीक से समझता हो, प्रेम के रंग से जिसका हृदय सराबोर हो, संयोग और वियोग दोनों ही परिस्थितियों में जो समान रूप से अशांत बना रहे, भाषा के समान गतिविधियों से परिचित हो और किसी प्रकार के बंधन को न स्वीकार जो स्वच्छंद रहे। यहाँ ब्रजनाथ ने घनानंद के काव्य के लिए जिन पाठकीय अपेक्षाओं की ओर संकेत किया है वे ही कवि की निजी विशेषताएँ भी हैं। इन विशेषताओं से घनानंद एक स्वच्छंद प्रेमी कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्हें अद्यतन ध्यान में रखकर ही उनकी कविता को ठीक से समझा जा सकता है। ब्रजनाथ ने आगे लिखा है, जकी कविताई के धोखे रहो यहाँ प्रवीण की मति जाती जकी, समझे कविता घन आनंद की ही आँखें नेह की पीर तकी। यहाँ प्रशस्तिकार ने जग की कविताई अर्थात अन्य लोगों की कविता से घनानंद की कविता के भिन्नता को संकेतित किया है। इस भिन्नता का मुख्य आधार है स्वानुभूति की प्रधानता। रीतिबद्ध कवियों की भांति काव्य शिक्षा इसका आधार नहीं है, इसलिए जो हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देख सकने की सामर्थ्य रखता है वह घनानंद की कविता को समझ सकता है। यहाँ हृदय की आंखों से देखने के माध्यम से प्रशस्तिकार ने आत्मानुभव के स्तर पर समझने के तथ्य को संकेतित किया है। यह सांकेतिक अभिव्यक्ति घनानंद की बहुत बड़ी विशेषता है। बिहारी तथा अन्य रीतिबद्ध कवियों ने प्रेम की पीड़ा के इजहार के लिए इस विरहजन्य ताप पिष्टता आदि का अतिरंजित वर्णन किया है, उसका घनानंद की कविता में सर्वथा अभाव है। अपनी अनुभय निष्ठ प्रकृति के कारण घनानंद की प्रेम की पीर का स्वरूप ही कुछ विचित्र हो गया है। इस विचित्रता की ओर कवि ने संकेत करते हुए लिखा है, पहचान हरी कौन मोसे अन पहचान को, त्यों पुकार मधिक मौन कृपा कान मधि नयन ज्यो। मौन के थे होने के कारण पुकार की अगम्यता को सुगम बनाने के लिए नेत्रों के मध्य ही कृपा के कान आवश्यक है, अर्थात प्रिय की निष्ठुरता के संदर्भ में विरही की व्यथा का उसकी भावभूमि पर पहुंचकर ही अनुभव किया जा सकता है। वाणी के माध्यम से उसे सुनकर नहीं देखा जा सकता, सहृदयतापूर्वक केवल देख कर ही सुना जा सकता है। घनानंद की वाणी का वास्तविक वैभव हमें मौन के मध्य ही मिलेगा। विषम या एक तरफा प्रेम की पीड़ा के अभिव्यक्ति में इन्होंने प्रायः मौन की भाषा का सहारा लिया है। प्रेम की एक निश्चितता और प्रिय द्वारा निरंतर उपेक्षा से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर संकेत करते हुए कवि ने लिखा है, इतिया न देखे देखी बेई जोग दशा भई, तय तो आना कानी ही स्यो बांधियो दीठी तार है। तेरे बहरावन रुई है कान बीच, हाय विरही विचारन की मौन में पुकार है। प्रिय पक्ष से इस निर्मम उपेक्षा के बावजूद प्रेम निराश नहीं होता, उसमें एक अदम्य साहस और विश्वास भी दिखाई देता है। आना कानी यार सिनिहार वो करो गो लो, कहाँ मो चकित दास त्यो न दीठ डोली है। मौन हूँ सो देखी हो कि तेक पान पाली हो, जो कुक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। जान घनानंद जो मोहि तुम्हें पैंज परी, जानिए कि टेक करे कौन धो मलोली है। रोई दिए रहोगे कहाँ लो बहराई वे की, कब हूँ तो मारिए पुकार कान खोली है। निष्ठुर और अनुपस्थित प्रिय को संबोधित विरहणी की इस उक्ति में एक विशेष प्रकार का साहस और आत्मविश्वास से लगता है। वह कहती है कि तुम कब तक बहानेबाजी का दर्पण देखते रहोगे, अर्थात जानबूझकर कब तक मेरी उपेक्षा करते रहोगे। क्या मेरी चकित कर देने वाली इस दशा को देखकर भी तुम अविचलित रह सकोगे। मैं मौन भाव से देख रही हूँ कि तुम कब तक अपनी न देखने की प्रतिज्ञा का पालन करते हो। मेरा हाहाकार से भरा मौन तुम्हारे मौन को समाप्त कर ही दम लेगा। फिर रानी दृढ़ विश्वास के साथ चुनौती भरे शब्दों में आगे कहती है कि अत्यधिक आनंद से युक्त प्रिय सुजान, तुम्हारे और मेरे बीच विमुख रहने और अपने अनुकूल बना लेने की होड़ लगी हुई है। अब देखना है कि अपनी प्रतिज्ञा से टलने का मलाल किसे होता है। तुम कब तक बहानेबाजी की रुई अपने कान में दिए रहोगे, अर्थात बहरा के बहाने कब तक टिके रहोगे। कभी तो मेरी इस मौन पुकार से तुम्हारे कान खुलेंगे, अर्थात मेरा यह मौन तुम्हारे निर्मम उपेक्षा भाव को समाप्त करके ही सांस लेगा। मौन घनानंद की एक महत्वपूर्ण निजी अवधारणा है, जो प्रेमी और प्रिय के पारस्परिक संबंधों तक सीमित न रहकर उनके पूरे काव्य शिल्प में भी व्याप्त है। एक व्यंजना शिल्प के रूप में काव्य के अंतर्गत मौन की वास्तविक गरिमा को पूरे मध्यकाल में केवल घनानंद ने ही समुचित रूप से समझा था। इस संबंध में उनकी स्पष्ट मान्यता है। पुरभावन में मौन को घूंघट कह दुरि बैठ विराजति बात बनी, मृदुमंज पदार्थ भूषण सो सुलसे हुलसे रस रूप मनी, रसना अलिकाल गली मधि हुए पधरावत ले चिक्री सेज ठनी, घन आनंद भूजनि अंक बसे मिलसे रिजवार सुजान धनी। कविता रूपी नव वधु यौवन का घूंघट डाले हृदय रूपी भवन में छिपकर विराजमान है। कोमल कांत शब्दार्थ रूपी आभूषण से सुसज्जित घनानंद स्वरूप आनंद स्वरूप वह मणि उमंगित होती है। उसकी यह विलुणोत्कंठा जीवा रूपी सखी के माध्यम से पूरी होती है, जो श्रवण रूपी गली के मार्ग से उसे चित्त रूपी सुसज्जित शैया पर ले आती है। वह नायक रूपी चतुर सहृदय अपनी काव्य समझ रूपी गोदी से में उसे लेकर विलास करता है। कवि ने यहाँ एक प्रकार से काव्य की आंतरिक विशेषता के साथ ही पाठक की पात्रता की ओर भी संकेत किया। बूझनी अंक और जवार सुजान शब्दों का प्रयोग इसका स्पष्ट प्रमाण है। विषम प्रेम के निर्वेचनीय विरहानुभूति की अभिव्यक्ति में घनानंद ने प्रायः मौन की सांकेतिक पद्धति का सहारा लिया है। इस सांकेतिकता उनकी निजी विशेषता है, जिसे एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। कंत रमय उर अंतर में सुलह नहीं क्यों सुखरास निरंतर, तंत्र है गहे अंगुरी ते जुग वियोग के तेह तचे पर तंत्र, जो दुख देखत हों घन आनंद रैन दिना बिन जान सुतंत्र, जानवे दिन रात पखान ते जया परे दिन रात को अंतर। वस्तुतः विरह वेदना अनुभव गम्य है, वह वाणी द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। विरहणी का कथन यह है कि प्रेम की वश्यता स्वीकार करने उसकी आँच में अच्छी तरह तपने वाले लोग भी मेरी पीड़ा को देख कर दांतों तली अंगुली दबाए रह जाते हैं। विरह वेदना की स्थिति का विवरण नहीं वरन उसकी सांकेतिक व्यंजना है। बखाने ते जाए परे दिन रात को अंतर में जो व्यंजना है वह स्थिति के कथन में कभी नहीं आ सकती। इस प्रकार प्रेम पद्धति और व्यंजना शिल्प दोनों ही दृष्टियों से घनानंद की अपनी कुछ निजी विशेषताएं हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही उनके काव्यगत वैशिष्ट को समुचित रूप में समझा जा सकता है।